hope you're able to come up with at least five practical ways we could show those different graces. Now we don't have time to review those today. But this is what I want you to do.
लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप ये करें।
I want to give you some homework.
मैं आपको कुछ ग्रह कार्य देना चाहता हूँ।
I want you to go home.
अगर आप घर जाइए।
And for the rest of your life.
अपने संपूर्ण जीवन भर।
Grow in your ability to practically express these graces.
आप अपनी उस योग्यता में बढ़िए कि आप व्यवहारिक तौर पे इन अनुग्रहों को व्यक्त कर सके।
Many preachers have a problem.
बहुत सारे प्रचारक सारी समस्या होती है.
They can write things in their notebook.
कि लोग अपने किताबों में तो लिख सकते हैं कॉपियों में.
When they go home, they easily forget it.
लेकिन जब लोग घर जाते हैं, आसानी से भूल जाते हैं.
You need to write it on your mind and heart and conscience.
आपको इसे अपने मस्तिष्क पे लिखना, अपने हृदय पे लिखना, अपने विवेक पे लिखना है.
Because you must be a good example.
क्योंकि आपको एक अच्छा उदाहरण होना है.
You must follow good example.
आपको अच्छे उदाहरण पीछे चलना है.
You must be a good example.
आपको एक अच्छा उदाहरण होना है.
How do you influence people?
आप कैसे लोगों पर प्रभाव डालेंगे?
By your words and your acts.
अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा.
You tell them the truth.
आप उनको सत्य बताएंगे.
You show them the truth.
आप उनको सत्य दिखाएंगे.
You teach them to love their wives.
आप उनको सिखाएंगे अपने पति से प्रेम करें.
You show them how to love their wives.
आप उनको सिखाएंगे कैसे अपने पति से प्रेम करें.
You teach them to discipline their children.
आप उनको सिखाएंगे अपने बच्चों को अनुशासन करें.
You show them how to discipline their children.
फिर आप उनको सिखाएंगे कैसे उन्हें अनुशासन करें.
You teach them to forgive one another.
आप उनको सिखाएंगे एक दूसरे को क्षमा करें.
You show them how to forgive one another.
फिर आप उनको सिखाएंगे कैसे एक दूसरे को क्षमा करें.
You teach by your words and by your example.
आपने उदाहरण द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा उनको सिखाएंगे.
Paul said, "Follow me."
बोलो जब मेरे पीछे
आओ. I follow Christ.
जैसे मैं मसीह पीछे चलता हूँ.
You must say this.
आपको ये कहना चाहिए.
Follow me.
मेरे पीछे आओ.
I follow Christ.
मैं मसीह के पीछे चलता हूँ.
And you must be an example.
और आपको एक उदाहरण होना है.
It's not enough just to teach general truth.
ये काफी नहीं है कि आप केवल समान सत्य को सिखाएं लोग.
You must tell them specifically how to apply the word of God.
आपको उनको सिखाना है कि कैसे वो लोग सीधे तौर पर लोगों के जीवन में लागूकरण करें.
Too much preaching in India is too general.
बहुत सारा प्रचार भारत में खाली सामान्य प्रचार है.
You must be specific and direct.
लेकिन सीधे तौर पर और साफ तौर से लागूकरण नहीं है.
You must give illustration.
आपको उदाहरण देने.
You must ask questions.
आपको प्रश्न पूछने.
You must be an example.
आपको लोगों के सामने प्रश्न होना है, उदाहरण होना है.
You must be willing to tell men the truth.
आपको लोगों को सच बताने के लिए तैयार होना है.
Are there any questions on practical ways that we can express these graces?
क्या कोई प्रश्न है कि क्या व्यवहारिक तरीके से आप इन अनुग्रह को लोगों में व्यक्त कर सकें?
Were you able to come up with some practical and specific ways to express the graces?
क्या आप इन अनुग्रह जो छह बातें थी गुण थे उनको लोगों में कैसे व्यक्त करना व्यवहारिक तौर से क्या आपने उन छह बातों को निकाला?
Now, don't mean this.
मेरा ये मतलब नहीं है.
We're to be holy and pure.
हमको पवित्र और शुद्ध होना है.
So a practical application is.
तो एक व्यवहारिक लागूकरण ये
है. I'll just try to be a nicer man.
अब हम एक अच्छा व्यक्ति होने की कोशिश करेंगे.
No.
इसका ये मतलब नहीं है.
You must be specific and detailed.
आपको स्पष्ट होना है और विस्तार के साथ होना है.
God is a specific and a precise God.
परमेश्वर एक सटीक और सही तरीके का परमेश्वर है.
The Bible is specific and precise in exhorting and teaching truth.
परमेश्वर सत्य को सिखाने में और उत्साहवर्धन करने में सटीक है और सही है.
And when you preach, you must be specific and direct.
और जब आप सिखाते हैं लोगों को तो आपको सटीक और सीधा और सीधे तौर पर लोगों से बात करना चाहिए.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
This is very important.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
We want to get to people's hearts.
हम लोगों के हृदयों तक पहुंचना चाहते हैं.
Not just fill their mind.
खाली उनके दिमाग को नहीं भरना है.
We want to get to their heart.
लेकिन हमें लोगों के हृदयों तक पहुंचना है.
And if you're going to get to people's hearts, you have to ask direct questions. Many preachers don't want to do that. Because it's not culturally acceptable. Or they may not have the courage to do it. Or they don't actually know how to do it. So we must grow in our ability to practically express true Christianity.
तो हमको अपनी क्षमता में बढ़ना है व्यवहारिक तौर में कैसे हम सच्ची मसीहत को व्यक्त कर सके
in the home,
घर में
the church,
कलीसिया में
and in the world.
और संसार में
any question?
कोई प्रश्न आपके सामने
we've been talking about Paul's life.
हम बात कर रहे हैं पौलुस के जीवन के बारे में पॉलस का जीवन
And we've talked about two things so far.
हमने अभी तक केवल दो बातों के बारे में बात किया है
His background and conversion.
उसके पृष्ठभूमि उसका हृदय परिवर्तन
His life and character.
उसका जीवन और चरित्र
Now we want to talk about number three briefly.
Well, हम तीसरी बात के बारे में बात करना चाहते हैं जल्दी से.
Very important.
बहुत महत्वपूर्ण.
His motives and his goals.
उसके मंशा और उसके लक्ष्य.
Now motives and goals are very similar.
उसके मंशा, उसकी अभिप्राय और लक्ष्य बहुत ही एक जैसे होते हैं
Sometimes they blend together and are the same thing.
कभी कभी वे आपस में इतना मिल जाते हैं कि वे एक ही चीज बन जाते हैं
But a motive is primarily answering the question, why?
लेकिन अभिप्राय प्राथमिक तौर पे क्यों प्रश्न का जवाब दे रहे हैं क्यों
Why do we do the ministry?
तो अभिप्राय हमारे क्यों प्रश्न का जवाब देते हैं क्यों हम सेवा करते हैं
This answers the question what or what we want to accomplish.
और लक्ष्य हमारे क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं हम क्या पाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं क्या हासिल करना चाहते हैं
Why do we do it?
क्यों करते हैं
And what are we trying to accomplish?
और क्या हम हासिल करना मांग रहे हैं क्या करना मांग रहे हैं
What motivates us within?
क्या चीज हमको भीतर से प्रेरित करता है
And where are we trying to go?
और हम कहां जाने का प्रयास कर रहे हैं
And we must have proper motives.
और हमारे अंदर सही मंशा होनी चाहिए
And we must have biblical goals.
और हमारे पास बाइबल आधारित लक्ष्य होने चाहिए
You can have wrong motives.
आपके पास गलत अभिप्राय हो सकते हैं
And you can have wrong goals.
आपके पास गलत लक्ष्य भी हो सकते
हैं Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को
You can do I've told you before.
Now that's the
You can do the right thing for the wrong reason.
आप सही चीज गलत कारण से भी कर सकते हैं मैं बता चुका हूं पहले आप सही चीज गलत कारण या मंशा से कर सकते हैं
Remember what Paul said.
आपको याद है पौलुस ने क्या कहा
Look in the book of Philippians.
फिलिपियों की पत्री में देखिए
We've looked at this verse before.
हम इस पद को पहले देख चुके हैं
Chapter 1.
पहला अध्याय
Paul is talking about his imprisonment.
वो अपने बंदीगृह के समय की बात कर रहा है
He says, my imprisonment has turned out actually for the further progress of the gospel. Paul saw God's sovereign hand and purpose even in his difficulties.
Paulus ne dekha parmeshwar ka haath uske is kathinai ke samay bhi.
Look at verse 13.
Tera pad dekh lijiye.
In my imprisonment, the name and cause of Christ had become well known throughout the whole guard.
Ki yahan tak ki kaisa kya rakshakon aur sab logon mein ye baat prakat ho gayi hai.
So he says it's had a chance to spread the gospel to other people.
Aur uske bandi banaye jane ki wajah se dusron tak suvachar phail sakta hai.
It's had an influence on the lost world.
Jo khoi duniya uske pe prabhav hua hai.
And he says it's had had an influence on the believer.
Verse 14.
Most of the brethren, they're trusting in God because of my imprisonment. And it's actually given them more courage to speak the word of God without fear. Now what does this teach us?
The
powerful influence of a godly example.
परमेश्वर का ईश्वर भक्त उदाहरण का एक एक सामर्थी उदाहरण.
They saw Paul's life.
उन्होंने पॉल के जीवन को देखा.
Not when things were going well.
जब अच्छी चीजें नहीं जा रही थी तब.
But in great tribulation.
लेकिन बड़े दुख के समय में.
He trusted God.
उसने प्रभु पर भरोसा किया.
And he saw God's sovereignty in all things.
और उसने हर एक चीज में परमेश्वर के सार्वभौमिकता को देखा.
He saw that all these things can work together for good.
और देखा ये सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न हो सकती है.
He didn't complain.
उसने शिकायत नहीं की.
Didn't question God.
परमेश्वर को प्रश्न नहीं किया.
Didn't doubt God.
परमेश्वर में संदेह नहीं
किया. He didn't quit the ministry.
उसने अपनी सेवा छोड़ी थी.
He preached the gospel wherever he was.
और जहां कहीं था उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया.
He wasn't fearful.
वो भयभीत नहीं था.
The believers saw Paul's life, and they heard the report about his imprisonment. And what did he do? It encouraged them. Encouraged them to do what? To preach the gospel without fear. It said if Paul can preach the gospel in prison,
वो कह रहे कि अगर पौलुस बंदी गृह में सुसमाचार का प्रचार कर सकता है,
he can preach the gospel out of prison.
तो हम बंदीगृह के बाहर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं.
You see the powerful influence of a godly example.
क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ईश्वर भक्त उदाहरण का सामर्थी उदाहरण?
But Paul is realistic and honest, though.
और लेकिन पौलुस जो है वास्तविकता पर भी विश्वास करता है और ईमानदार है वो. 15 पद.
For some to be sure preach Christ from envy and strife, but some from goodwill. He said they, verse 16, do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. But notice verse 17. The other people preach Christ out of selfish ambition rather than pure motive. They're trying to produce frustration and distress for me in my imprisonment. Now what does verse 17 tell us? You can preach Christ for the wrong reason. For selfish ambition and for impure motive.
आप स्वार्थ में ममता से और गलत धारणाओं के प्रचार करते हैं ईश्वर से.
So God is interested in our motive.
तो परमेश्वर हमारे ममताओं में रुचि रखता है.
Man looks on the outside, God looks at the heart.
परमेश्वर मनुष्य तो बाहर की बातों में देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर की बातों में देखता है, मन की बातों में देखता है.
Many men serve God for wrong reason.
बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं गलत उद्देश्य से.
They have wrong ambition.
उन लोगों की गलत मनसाएं होती
हैं. They want to glorify themselves.
वे स्वयं को महिमान्वित करना चाहते हैं.
They want the praise of man.
वो लोग मनुष्यों की बड़ाई चाहते हैं.
They do it for material gain.
और वो लोग भौतिक लाभ के लिए करते हैं.
Many of the preachers on TV.
बहुत सारे प्रचारक जो टीवी पे भी आते हैं.
What do they say?
वो क्या कहते हैं?
If you believe in Christ,
अगर तुम यीशु मसीह विश्वास करते
हो, you're under grace.
अगर तुम अनुग्रह के अधीन हो,
God freely gives you all things.
परमेश्वर तुम्हें सब कुछ मुफ्त
में
देता है.
He wants you to be rich.
वो चाहता है कि तुम अमीर हो जाओ.
He wants you to be healthy.
वो चाहता है कि तुम स्वस्थ हो जाओ.
He wants you to be happy.
वो चाहता है कि तुम प्रसन्न हो.
He doesn't want you to have any problems.
वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई समस्या हो.
If you're not wealthy and healthy, you don't have enough faith.
अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास स्वास्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास काफी चॉइस करो, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है.
And I will pray for you.
और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा.
Send me 1,000 rupees.
और मेरे पास 1,000 रुपए भेज दो.
And I will pray for you.
और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा.
Now listen carefully.
अब ध्यान से इस बात को.
God is concerned about the motives.
परमेश्वर हमारे अभिप्रायों की भी चिंता करता है.
We've talked about this before.
हम बात कर चुके इसके बारे में पहले.
We must guard our motives.
हमें अपने अभिप्रायों के उद्देश्यों की सुरक्षा करनी है.
So let's look very quickly at some of the motives and goals that were evident in the life of the Apostle Paul.
तो आइए हम जल्दी से देख लें पौलुस प्रेरित के जीवन की मनसाएं, इच्छाएं, अभिप्राय और साथ ही साथ उसके लक्ष्य क्या थे.
What do you think Paul's highest and greatest motive was?
आप क्या सोचते हैं पौलुस का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अभिप्राय या उद्देश्य या मंशा क्या थी?
The what?
Evangelism, gospel.
That's a great motive.
ये एक बढ़िया अभिप्राय मकसद है.
That's one of his main motives.
ये उसके कई मकसदों में से एक है.
But I asked this question.
लेकिन मैंने तुमसे ये प्रश्न पूछा, आपसे ये प्रश्न पूछा.
What was his highest motive?
सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा मकसद उसके लिए क्या था?
The glory of Christ. God's glory.
हाँ जी.
परमेश्वर की महिमा. मसीह का सम्मान, परमेश्वर की महिमा, मसीह का सम्मान.
Paul's greatest motive did not end or terminate with man.
पौलुस के सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य के साथ नहीं खत्म हो गया या वहीं भी नहीं रुक गया.
Paul's final, greatest, highest motive must end and terminate on God.
लेकिन पौलुस का सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर के साथ रुका, उसके साथ ही अंत हुआ उसका.
What did he say in Romans chapter 11?
रोमियों के 11 अध्याय में पौलुस ने क्या कहा?
And verse 36.
और उसे 36 पद में.
From him.
उससे.
Through him.
उसके द्वारा.
To him.
उसके लिए.
Are all things.
सब कुछ है.
To him be the glory.
उसी को महिमा मिले.
Paul had one all-consuming passion.
पौलुस का एक ही सबसे बड़ी चाहत थी जो उसको पूरे घेरे हुए थी.
It was the glory of God through Jesus Christ.
वो थी परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा.
Remember what he says in Philippians.
याद है वो क्या कहता है फिलिपियों.
Philippians chapter 1, verse 21. For me to live is Christ, but to die is gain. He was willing to live only for Christ.
वो केवल मसीह के लिए जीना चाहता था.
Why?
क्यों?
Look at verse 17, 18.
अठारह देख लीजिए.
Only that in every way, whether in pretense or truth, Christ is proclaimed.
वो चाहता है कि केवल चाहे कपट पे, चाहे सच्चाई में, मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता रहे.
Chapter 3.
तीसरा अध्याय.
One twenty. This is Paul's motive and goal.
पहला जाय उसका बीस पद ये है पॉलिस का ही अभिप्राय मंशा और उसका लक्ष्य.
According to my earnest expectation and hope that I will not be put to shame with any in anything.
कहते हैं मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा ये है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं.
But with all boldness.
परंतु सारे सूर्य साहस से.
Because he says, I'm not ashamed of the gospel.
क्योंकि कहता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता.
Then with all boldness, the word means openness, clarity, obviously evident to all.
वो कहता पूरे साहस के साथ, इसका मतलब है खुलेपन के साथ, स्पष्ट तौर पे सबके सामने सब लोगों की दृष्टि में.
Christ now as always will be exalted in my body.
मसीह मेरे देह में अभी और हमेशा वो ऊंचा उठाया जा सके.
My one goal,
मेरा एक ही उद्देश्य,
is to exalt Christ,
कि मसीह को मैं ऊंचा उठाऊं,
to the glory of God,
परमेश्वर की महिमा के लिए.
Because when Christ is exalted,
क्योंकि जब मसीह उठाया जाता है,
the Father is glorified,
पिता को महिमा मिलती है.
And he says, even if I live or I die,
वो कहता है चाहे मैं जीऊँ चाहे मैं मरूँ,
if I have success or I have failure,
चाहे मुझे सफलता मिले चाहे मुझे असफलता मिले,
if I have prosperity or I have persecution,
चाहे मेरे पास संपन्नता हो या चाहे मेरे पास विरोध हो,
it doesn't matter what happens to me,
ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मेरे को क्या होता है.
There's only one thing I'm concerned about,
मैं केवल एक ही बात के लिए चिंता करता हूँ,
Jesus Christ would be exalted in my whole life,
कि यीशु मसीह मेरे संपूर्ण जीवन में महिमान्वित हो,
to the glory of God the Father,
ताकि परमेश्वर पिता की भी महिमा हो,
because the Father delights to glorify the Son,
क्योंकि परमेश्वर पिता को आनंद आता है अपने पुत्र की महिमा करने के लिए,
and the Son delights to glorify the Father,
और पुत्र को आनंद आता है अपने पिता की महिमा करने के लिए.
Paul says this,
पौल से कहता है,
that honor,
कि सम्मान,
and attention,
और उसको सारा ध्यान,
and praise,
और सारा आदर,
and recognition,
और सारी पहचान,
and everyone's direct look would be toward God in Christ,
और कि सब की आंखें सब की निगाहें परमेश्वर की ओर मसीह में होकर के एक साथ लगी रहे.
Even if it kills me,
चाहे इसी वजह से मैं मर भी जाऊं,
no matter what the cost,
चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े,
I have one high holy goal,
मेरे पास एक ही ऊंचा सर्वोत्तम एक ही लक्ष्य है.
Not my own glory,
मेरे खुद की महिमा नहीं,
not my own benefit,
मेरे खुद के फायदे नहीं,
not my own prosperity,
मेरे खुद की संपन्नता नहीं,
not my own comfort,
मेरे खुद का आराम नहीं.
We do not preach ourselves,
हम अपने आप का प्रचार नहीं करते,
but we preach Christ Jesus as Lord,
लेकिन हम यीशु मसीह का प्रचार करते जो प्रभु
है, ourselves as your servants for Christ's sake,
और हम अपने आप तुम्हारे सेवक हो करके यीशु मसीह के खातिर.
Everything Paul did,
सब कुछ पॉल ने किया,
everything he said,
सब कुछ उसने कहा,
everything he suffered,
सब कुछ उसने सह लिया,
all that he experienced,
जो कुछ उसने अनुभव कर लिया,
one great motive,
उस सब का सिर्फ एक ही बड़ा विचार था,
one final end,
एक ही अंतिम अंत था,
परमेश्वर
की महिमा,
by the exaltation of his Son,
उसके पुत्र के ऊंचे उठाए जाने के द्वारा. लेकिन आप कहेंगे हम तो पहले से जानते हैं इस बात को.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Every day.
प्रतिदिन.
You ought to get on your knees.
आप अपने घुटनों पे हो जाना चाहिए.
And say, Lord, this day.
आप कहते हैं प्रभु आज के दिन.
I want to glorify you.
मैं आपको महिमान्वित करना चाहता हूँ.
By seeing Christ exalted through my life.
और यीशु मसीह को मेरे जीवन में ऊंचे उठाए जाने के द्वारा.
Everything I say.
जो कुछ मैं कहता हूँ,
I do,
जो कुछ मैं करता हूँ,
everything I think,
जो कुछ मैं सोचता हूँ,
before the angels,
स्वर्गदूतों के सामने,
before the believers,
विश्वासियों के सामने,
before the world,
संसार के सामने,
before my wife,
अपने पति के सामने,
before my children,
अपने बच्चों के सामने,
before my God,
अपने परमेश्वर के सामने,
one goal,
एक लक्ष्य,
one desire,
एक इच्छा,
one motive,
एक मंशा,
that in my life,
कि मेरे जीवन में,
Jesus Christ would be exalted,
यीशु मसीह ऊंचे उठाए जाए.
Glory of God the Father.
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए.
That was the driving passion of Paul's life.
ये था पॉल के जीवन का एक चाहत जो उसको हर चीज में बनाए रखी थी, अग्रसर रखी थी.
The driving passion of Paul's life was a person.
वो उसके जीवन में वो इच्छा जो उसको अग्रसर बनाए रखी थी एक व्यक्ति था.
It wasn't just a doctrine.
केवल एक सिद्धांत नहीं था जो उसको आगे बढ़ने के लिए बनाए रखे थी.
He said, "For me to live is a person."
उसने कहा कि मेरे लिए जीने का मतलब है एक जन, एक पुरुष.
He believed Christ was alive.
वो ये मानता था कि यीशु मसीह जीवित
है. He believed he was in heaven.
वो ये मानता था कि यीशु मसीह स्वर्ग में है.
Christ had spoken to him.
मसीह ने उससे बात किया था.
Christ had called him.
मसीह ने उसको बुलाया था.
Christ had appointed him.
मसीह ने उसको वहाँ पे निर्धारित किया था.
Damascus Road.
दमिश्क के मार्ग पर.
Saul, Saul.
Shaul, Shaul.
You are a chosen instrument.
तुमको तुम एक चुना हुआ पात्र हो.
He believed he was alive.
वो मानता था कि यीशु मसीह जीवित है.
And he had one passion.
और उसके पास एक ही चाहत थी.
That man now in heaven.
कि वो व्यक्ति जो अब स्वर्ग में है.
Be exalted in his life on earth.
वो उसके इस पृथ्वी पे जो शरीर है उसमें जीवन है उसमें वो ऊंचा उठाया जाए.
You need to ask God to give you that motive and goal every day of your life.
आपको परमेश्वर से कहना है और मांगना है कि प्रतिदिन आपके जीवन में परमेश्वर आपको वो मनसा दे, वो इच्छा दे.
Do you understand what Paul is saying?
क्या आप समझ रहे कि पॉलस क्या कह रहा है?
Any question?
कोई प्रश्न है आपके सामने?
We exist for God.
हमारा अस्तित्व, हम अस्तित्व इसलिए है कि हम परमेश्वर के लिए अस्तित्व में है.
There is one God.
एक ही परमेश्वर है.
And we exist for Him.
और हम उसके लिए इस दुनिया में है.
And there's one man, one the Lord, one Lord Jesus Christ.
और एक ही आदमी है प्रभु यीशु मसीह.
And we exist through Him, Paul said.
और हम उसके द्वारा अस्तित्व में है, पॉल कहता है.
I have one desire.
हमारा एक इच्छा है.
And that is that when people see me.
और वो ये है कि जब लोग मुझे देखें,
they might give glory to God.
वो परमेश्वर को महिमा दे सकें.
That was the motive of Paul's life.
ये था पौलुस के जीवन का उद्देश्य.
What are you living for?
आप किस चीज के लिए जी रहे?
Why are you on earth?
आप क्यों इस संसार में?
Why do you preach?
क्यों प्रचार करते हैं आप?
Why are you serving God?
क्यों आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं?
You must have this motive.
आपके पास ये उद्देश्य होना चाहिए.
We are not preaching ourselves.
हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं.
Not glorifying ourselves.
हम अपने को महिमा नहीं दे रहे हैं.
We are not benefiting ourselves.
हम केवल अपना फायदा नहीं उठा रहे हैं.
Giving up the world.
हमने संसार को दे
दिया. We don't care for the praise of man.
हम लोगों की सराहना की चिंता नहीं करते.
We have one goal.
हमारे सामने सिर्फ एक उद्देश्य है. एक ही लक्ष्य, सबसे ऊंचा लक्ष्य.
Jesus Christ be exalted.
वो ये कि यीशु मसीह महिमान्वित हो.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Paul had another goal.
अपोलोस के जीवन में एक और लक्ष्य था,
closely related to this,
जो कि इससे बड़ी ही नजदीकी से संबंधित था.
He also wanted to please God.
वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था.
He didn't want to just bring attention and honor to God through his life as people saw him.
वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर को महिमा मिले उसके जीवन से जैसे लोग उसको देखते हैं.
He also had a sense of a personal relationship with God as his father.
लेकिन उसको उसका उसके अंदर एक ऐसी ऐसी जानकारी थी, भावना थी कि परमेश्वर उसका पिता है और पिता के नाते उसका उससे एक व्यक्तिगत संबंध है.
And he wanted to please his heavenly father.
वो अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहता.
Look in 2 Corinthians. And chapter
5.
Here in this chapter, Paul sets forth several motivations in his life.
And
verse
9.
This, he says, is my ambition. Whether I'm alive or dead. To be pleasing to him.
मैं उसको प्रिय रहता हूँ.
Do you see that?
आप देख रहे हैं यहां पे, क्या आप देख रहे हैं यहां पे?
This is my ambition.
ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी इच्छा है.
This is my desire.
ये मेरी मंशा है.
This is what I'm aiming for.
यही मैं पाना चाहता हूं.
I want to please God.
मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं.
I know God loves me.
मैं जानता हूं परमेश्वर
मुझे. I know He has forgiven me.
मुझे मालूम है मुझे क्षमा
किया. I know I am justified.
मुझे मालूम है मैं सभी खराब
हूं. I know I am secure in Christ.
मुझे मालूम है मैं मसीह में सुरक्षित हूं.
I know in whom I have believed.
मुझे मालूम है कि मैंने किस में विश्वास किया है.
I know that nothing can separate me from the love of God in Christ Jesus.
और मैं जानता हूं मसीह यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर के प्रेम से मुझे कुछ भी कोई भी अलग नहीं कर सकता.
So I want to please my father.
तो इसलिए मैं अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं.
Now we've talked about this before.
हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं.
No matter what we do,
चाहे हम जो भी करें,
God loves us unconditionally.
परमेश्वर बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करता है, चाहे कुछ भी करें.
Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus.
मसीह यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी कुछ भी अलग नहीं कर सकता.
If you are a true child of God,
अगर आप परमेश्वर की सच्ची संतान हैं,
no matter what you do,
चाहे कुछ भी आप करें,
your position as a child of God does not change.
आपका जो स्थान है परमेश्वर के संतान होने के नाते वो बदलता नहीं.
Justified freely by His grace,
हम मुफ्त में सेव में तुम्हें धर्मी ठहरा दिए गए उसके अनुग्रह के द्वारा.
We need to understand this.
लेकिन हमें इस बात को समझना है.
Sometimes God may not be pleased with His children.
कभी-कभी परमेश्वर अपने संतानों से प्रसन्न नहीं होता है.
He loves them unconditionally.
वो उसे प्रेम अवश्य करता है बिना किसी शर्त के.
But Paul said, "My goal is to please Him."
लेकिन पौलुस कहता है कि मेरा उद्देश्य है कि मैं उसको प्रसन्न कर सकूं.
He didn't say my goal is to be accepted by Him.
वो ये नहीं कह रहा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं उसके द्वारा ग्रहण.
I'm already accepted.
मैं स्वीकार हो चुका हूं.
My goal is not to be justified by Him.
मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं उसके द्वारा धर्मी ठहरा.
I'm already justified.
मैं तो धर्मी ठहरा दिया जा चुका.
My goal is not to be forgiven.
मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मुझे क्षमा मिले.
I can't earn forgiveness.
मैं क्षमा पा नहीं सकता.
I can't earn acceptance.
मैं स्वीकृति खरीद नहीं सकता.
I cannot work for my justification.
मैं अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए कार्य नहीं कर सकता.
I am secure in Christ.
मैं मसीह में सुरक्षित हूं.
But I want to please my father.
लेकिन मैं अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं.
No matter what you do, God's love toward you does not change.
आप चाहे जो भी करें, परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति बदलता नहीं.
But what you do or don't do may affect God's good pleasure in you.
लेकिन आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, वो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं, उसमें फर्क हो सकता है.
And Paul basically says this, my desire is to be pleasing to Him.
और पौलुस ये कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा प्रसन्न योग्य हूं, उसको प्रसन्न कर सकूं.
Look again in the book of Galatians.
अब गलती के पत्र में देख लीजिए आपके मन
this morning.
आज की सुबह हमने देखा था इसको.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
We're talking about Paul's motive.
हम पौलुस के मंशाओं के बारे में बात कर रहे हैं.
Verse 10.
दसवां पद.
Am I now seeking the favor of man or God?
क्या मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की?
Am I trying to please men?
या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ?
I was trying to please men. I could not be a bond servant of Christ.
यदि मैं अपने मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ तो मैं मसीह के दास ना होगा.
He wanted to please God.
वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता
था. Look in 1 Thessalonians.
आइए पहले थिस्सलुनीकियों को भी
देखें. Chapter 2 again.
और दूसरे अध्याय फिर से देख लीजिए.
You should spend a lot of time in 1 Thessalonians chapter 2.
आपको पहला थिस्सलुनीकियों से दूसरे अध्याय में बहुत समय व्यतीत करना चाहिए.
Verse 4.
चौथा पद.
We have been approved and entrusted by God with the gospel.
परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा.
And so we speak and preach, he said.
इसलिए हम प्रचार करते हैं.
And what is our motive?
वो कहता है हमारा उद्देश्य क्या है?
Not as pleasing men.
इसलिए नहीं कि हम मनुष्य को प्रसन्न करें.
But pleasing God.
लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करें.
Because God examines the heart.
क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता है.
Very clear that Paul had a motivation to please God.
ये बहुत स्पष्ट है कि पौलुस के सामने एक 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 कोई चीज थी जिसको बात करनी थी, प्रेरित करनी थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए.
Now do you understand what we're saying when we talk about the difference between God's unconditional love and God's conditional good pleasure?
अब आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं और फर्क बता रहे हैं परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम में और परमेश्वर का शर्त के साथ हमें प्रसन्नता होने प्रसन्न होने की बात. दो फर्क बात है कि नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बिना शर्त के पहली बात, लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता हम में या परमेश्वर की खुशी हम में वो शर्त पर आधारित है.
Now there are two extremes to avoid.
और दो चरम स्थितियां हैं जिनको हमें अनदेखा कर हमें अलग करना चाहिए.
Some people think this.
कुछ लोग ये सोचते हैं.
Well, if God loves me unconditionally, He's always pleased with me.
कुछ लोग ये सोचते हैं अगर परमेश्वर हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है तो इसका ये मतलब होगा वो हमसे हमेशा प्रसन्न होता होगा.
That's wrong thinking.
नहीं, ये गलत सोच है.
The other extreme.
लेकिन दूसरा चरम स्थिति है.
Well, if God's not pleased with me, He does not love me.
कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता है.
Now, neither one of those are true.
नहीं, ये दोनों चीजें सही नहीं, बातें सही नहीं है.
Do you understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं क्या चाह रहे हैं? आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं?
The preacher is not just satisfied to be loved and forgiven.
और ये प्रचारक है वो सिर्फ इतना इस बात से खुश नहीं रहता, काफी संतुष्ट नहीं रहता कि परमेश्वर ने उसको प्रेम किया और उसको क्षमा कर दिया.
He wants to please his father.
खाली क्षमा कर दिया और प्रेम प्राप्त कर लिया सिर्फ इतना काफी नहीं, लेकिन हम पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक एक इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर.
God is a compassionate father.
परमेश्वर एक दया करने वाला पिता है.
He knows our frame.
वो जानता है कि हमारा ढांचा क्या है.
A high priest that can sympathize with our weakness.
हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों से सहमति रह सकता है.
Listen carefully.
सहानुभूति रख सकता है. ध्यान सुनिए इस बात को.
God is easy to please.
और परमेश्वर को प्रसन्न करना बड़ा आसान है.
Did you hear that?
क्या आपने सुन लिया इस बात को? परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आसान है. सुनिए आपने बात को.
God looks at the heart.
क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है.
We fail God.
हम परमेश्वर को के सामने असफल भले हो जाए.
Sometimes we do not do our duty.
कभी कभी हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं.
But God knows the heart.
लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है.
And the weakest desire.
और जो सबसे कमजोर भी मन से इच्छा होती है.
And the smallest effort.
और सबसे छोटा सा भी प्रयास.
Done out of love for Christ.
मसीह के लिए प्रेम में होकर जो हम करते हैं वो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है.
But the preacher says this.
लेकिन एक जो प्रचारक होता है या सेवक तो ये कहता है.
I want to please our heavenly Father.
लेकिन एक सेवक वो ये कहता है कि मैं अपने स्वर्ग के पिता को प्रसन्न करना चाहता हूं.
The glory of God.
परमेश्वर की महिमा.
To please God.
परमेश्वर को प्रसन्न करना.
Number three.
तीसरी बात.
The fear of God.
परमेश्वर का भय.
You say, how can you have these two motives?
अब आप उसे तय कर सकते हैं कैसे ये उद्देश्य मनसा हिसाब से चल सकती है. परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर को प्रसन्न करना.
Glory of God, the fear of God.
परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का भय.
Look at 2 Corinthians again.
दूसरा कुरिन्थियों को फिर से साथ नहीं लीजिए.
Now we told you before in the Bible there are two kinds of fear.
हम आपको पहले बता चुके हैं परमेश्वर के वचन में दो तरह के भय.
There is a slavish fear that involves eternal punishment.
एक दास का भय है जिसमें दंड का भय होता है.
Then there's the fear of a son that involves the judgment seat of Christ.
और एक संतान एक बालक एक पुत्र का भय होता है जिसमें परमेश्वर के न्याय का सिंहासन शामिल होता है उसका भय शामिल होता है.
Now this is a very important and a very serious subject.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है.
And we need to have real biblical sensitivity when we talk about this.
और हमारे पास बहुत ही बाइबल पर आधारित संवेदनशीलता होनी चाहिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं.
Now notice again in chapter 5 verse 9.
ध्यान दीजिए फिर से पांचवा अध्याय उसके नवे पद में.
We have as our ambition, whether home or absent, to be pleasing to Him. Why do we want to be pleasing to Him? What's the next verse say? Why? Why do we want to be pleasing to Him? What's verse 10 say? Well, we must all appear before the judgment seat of Christ. He's talking about believers. We must appear. It is a necessity. We all will appear. No one is accepted. The word appear means to be opened up and to be manifested and to be revealed. Before the judgment seat of Christ. Now this is not a judgment regarding our salvation or our eternal destiny of heaven or hell.
यहाँ पे जो न्याय की बात हो रही है वो हमारे उद्धार के संबंध में बात नहीं हो रही है और स्वर्ग और नरक के संबंध में उसकी बात नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे उस यहाँ की बात नहीं हो रही है.
It's a judgment regarding our faithfulness and responsibility to the stewardship that God has given us.
लेकिन ये न्याय यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो भंडारी पर हमको सौंपा गया है उसके बारे में बात हो रही है कि हम कितना विश्वासी योग्य हुए या नए हुए.
And it says so that each one may be recompensed, rewarded, the word means, for the deeds in the body according to what he's done, whether good or bad.
और यहाँ पे लिखा प्रत्येक को अपने भले या बुरे कार्यों के अनुसार उनको दे दिया जाए.
This is a judgment according to works.
और यहाँ पे एक न्याय है जो कार्यों के अनुसार है उसी के अनुसार हमें दान मिलेगा या नहीं मिलेगा.
Not for our salvation.
ये यहाँ पे हमारे उद्धार के लिए नहीं है.
The judgment of our salvation was accomplished on the cross.
क्रूस के ऊपर हमारे उद्धार या मुक्ति या मोक्ष के लिए जो न्याय है वो हो चुका है.
This is the judgment of the believer's life and works and ministry.
ये जो यहाँ पे न्याय हो रहा है एक विश्वासी के जीवन के लिए उसके कार्य के लिए और उसकी सेवकाई के संबंध का न्याय की बात कर रही है.
We must be there.
हम तो वहाँ पे होना ध्यान से
We all will be there.
हम सबको वहाँ पे होना होगा.
We all will be revealed.
और सब कुछ प्रकट कर दिया जाएगा.
It is according to works.
ये हमारे कार्यों के अनुसार है.
And there will be a reward.
और कुछ वहाँ पे कुछ हमारे सामने कुछ दान होंगे कुछ हमारा इनाम मिलेगा.
What we have done.
और जो कार्य हमने किया उसके अनुसार पुरस्कार मिलेगा.
Therefore,
इसलिए,
verse 11,
ग्यारह पद.
Therefore,
इसलिए,
what?
ग्यारह पद. अतः क्या इसलिए क्या इसलिए क्या अतः क्या ग्यारह पद.
Therefore, knowing the fear of the Lord.
अतः परमेश्वर का भय मानते हुए.
We persuade men.
इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए हम लोगों को समझाते हैं.
Now Paul has multiple motivations going on here in this passage.
और इस स्थल में पौलुस के अंदर कई चीजें जो उसको प्रेरित कर रही कई बातें जो उसको उत्साहित करेंगे जो करेंगे.
And they're all tied together.
और वे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है.
He said, I want to please God.
वो कहता है मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसको प्रिय करना चाहता हूँ.
Stand before Christ.
क्योंकि मैं मसीह के न्याय के सामने खड़ा होगा एक दिन.
And when I understand, I'm going to stand before Christ.
और जब मैं समझ जाता हूँ कि मैं मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा.
It produces within me a holy fear.
तो वो मेरे भीतर एक पवित्र भय उत्पन्न करता है.
Not a slavish fear.
ये एक दास का भय नहीं है.
Not a fear of punishment.
ये सजा का भय नहीं है.
What a desire for reward.
लेकिन एक इच्छा है कि हमें पुरस्कार मिले.
A desire to please God.
एक इच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, उसके प्रिय बन सके.
Now this is a great mystery.
और ये बड़ा रहस्य है.
And we do not know everything and all that this means.
हम इसमें हर एक बात और सब कुछ इसका क्या अर्थ है नहीं जानते.
But notice 1 Corinthians.
लेकिन ध्यान दीजिए पहला कुरिन्थियों.
Paul mentions this again.
और पौल इसे बात फिर से कहता है यहाँ पे.
He's talking specifically about preachers.
और यहाँ पे विशेष तौर से पौल प्रचारकों के बारे में बात कर रहा है.
Chapter 3, verse 10.
यहाँ पे तीसरा अध्याय का 10 पद में.
According to the grace of God that was given to me as a master builder, I laid a foundation.
उसमें कहता है कि पौलुस ने सदैव कारण जो मुझे दिया है मैंने कुछ राजमिस्त्री की भांति नींव डाली.
Another one is building upon it.
और कोई दूसरा उसके ऊपर रद्दा रख रहा है.
You need to be careful how you build.
लेकिन तुमको सावधान रहने की कैसे उसके ऊपर
रद्दा रखो. Lay the proper foundation.
और क्योंकि तुम्हें कायदे से नींव गिराना चाहिए.
What is that foundation?
वो नींव है क्या?
It is Jesus Christ and His gospel.
वो है यीशु मसीह और उनका सुसमाचार.
And you must deal with the proper material.
What
a proper material.
Gold,
silver, and precious stone. And what does he mean? What do we use to build the spiritual house of God? We use the word of God. We use the ministry of prayer. We use the sacrifice of law. We use our own testimony of holiness.
हम अपने स्वयं की पवित्रता की गवाही का उपयोग करेंगे.
True converts.
ताकि हम सच्चे हृदय परिवर्तन लोगों को प्राप्त कर सके. सच्चे शिष्यों को.
True homes.
सच्चे घर.
All of this is gold, silver, and precious stone.
ये सब है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर.
Right foundation.
सही बुनियाद.
Right material.
सही सामग्री.
Right motive.
और सही उद्देश्य.
Why?
क्यों?
Gauls verse 13.
You can take that look at that.
Each man's work will become evident, clear, revealed. Opened up before the world.
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य प्रकट किया जाएगा संसार के सामने स्पष्ट हो जाएगा खोल दिया जाएगा पता चल जाएगा क्या है कि नहीं है.
How is it going to be revealed?
और कैसे दिखाया जाएगा उसके सबके सामने.
With a little flashlight.
एक छोटी सी टॉर्च से नहीं दिखाया जाएगा.
But with fire.
लेकिन एक बड़ी सी आग के द्वारा दिखाया जाएगा असलियत क्या है.
What does Paul say?
और पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पे.
Fire will reveal it.
और वो आग यहाँ पे प्रदर्शित कर लेगी.
And it will test and reveal the quality of every man's work.
और वो हर एक व्यक्ति की क्या उसके अंदर की उसकी असलियत उसको पता चल जाएगा.
Like a fire refining gold.
और हर एक व्यक्ति की गुणवत्ता आग से पता जाएगी जैसे कि आग सोने को दिखाती सही करती है.
Everything that's not gold will be burned up.
और जब सोने को जलाया जाता है आग से और जो कुछ भी सोना नहीं वो जल जाता है.
14.
14 पर.
The man's work which he builds on it, he will receive a reward.
और यदि किसी व्यक्ति का काम बना रहेगा तो फिर उसको एक पुरस्कार प्रतिफल मिलेगा.
The man's work if burned up, he will suffer loss.
और यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो फिर वो तो हानि उठाएगा.
He will be saved. Yes, through fire.
और यद्यपि वो बस तो जाएगा लेकिन ऐसे की मानो की आग में से होकर के.
Now listen carefully.
और ध्यान से इस बात को.
This is the very awesome and mysterious thing.
ये बड़ी ही अद्भुत किंतु बड़े ही रहस्यमय बात है यहाँ पर.
But you.
लेकिन आप.
And I.
मैं.
Especially if we're preachers.
और विशेष तौर से अगर हम सुसमाचार प्रचारक हैं.
Stand before our Savior.
हम एक दिन मसीह के सामने खड़े होंगे.
And He will open up our heart, our life, and our ministry.
वो एक दिन हमारा जीवन, हमारी सेवकाई, हमारा हृदय को खोल के रख देगा.
And all that was wrongly motivated.
और वो सब चीजें जो गलत मंशाओं से की गई थी.
All that was wrongly done.
और वे सब बातें जो गलत तरीके से करी गई थी.
All that was wrongly produced.
और वो सब जो गलत तरीके से उत्पन्न की गई थी.
Will be burned up.
वो सब जल जाएगा.
And all that will remain.
और वो सब जो कुछ बच जाएगा.
Proper motive.
सही अभिप्राय.
Proper manner.
सही तरीके.
Proper result.
और सही परिणाम.
And so what does Paul say?
और तुम्हें कहता है क्या है पौलुस यहाँ पे.
Chapter 4.
और ध्यान देने की राजा भाई.
Verse 2.
और उसका चौथा अध्याय का दूसरा पद.
We must be trustworthy.
हमें विश्वास योग्य होना है.
So final judgment is not on this earth by man.
और जो हमारा अंतिम न्याय होना है वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा नहीं होगा.
Final judgment is in heaven with God.
और जो हमारा अंतिम न्याय है वो परमेश्वर के साथ होगा.
So Paul says this.
तो पौलुस ये कहता है.
Verse 3.
उसे तीसरा पद में.
It's a very small thing that I'm examined by you.
अरे ये तो बड़ी छोटी बात है कि तुम लोग मेरा न्याय करोगे.
Or by any human court.
या किसी मानवीय न्याय के द्वारा न्याय करना.
In fact, I don't even judge myself.
वो कहता है कि मैं तो अपने आप को न्याय करता ही नहीं हूँ.
Why?
क्यों कह रहा है वो?
Because even though I'm not conscious of anything against myself.
वो कहता है ये तो भी मैं अपने बारे में किसी बात को दोष नहीं न्याय नहीं करता.
I'm not by that acquitted.
मैं उसके द्वारा निर्दोष नहीं ठहराया जाता.
Because the one that judges me is the Lord.
और जो मुझ पर न्याय करता है जो दोष लगा रहा है वो तो परमेश्वर है.
Paul said, I'm not interested in the judgment of man.
पौल कहता है कि मैं मनुष्यों के न्याय में इच्छा नहीं करता. कोई रुचि नहीं रखता.
In fact, my own self judgment may not be accurate.
वो कहता है यहाँ तक कि मेरा स्वयं का न्याय अपने बारे में सही नहीं हो सकता.
The one that judges me is the Lord.
केवल मुझे प्रभु ही मेरा न्याय कर सकता.
What is he saying?
तो क्या कह रहा है?
Let's quit judging one another's ministry.
तो हमें एक दूसरे की सेवकाई को न्याय देना छोड़ दो. दोष मत
लगाओ. Don't say he's a success and he's a failure.
तो ये मत कहो कि वो सफल है ये असफल है.
Notice verse 4.
यहाँ पर देखिए चौथे पद क्या कहता है. पांचवे पद क्या कहता है.
Don't go on passing judgment before the time.
वो कहता समय से पहले किसी पे न्याय मत करो.
But wait till the Lord comes.
लेकिन जब तक प्रभु नहीं आए तब तक रुके
रहो. The Lord comes, what will he do?
और जब प्रभु आएगा तो क्या करेगा वो?
He will bring to light two things.
वो प्रकाश में दो बातों को लेकर के आएगा.
Number one,
पहली बात,
the things that we have done in the darkness.
वे हैं चीजें जो हमने अंधकार में अकेले में की हैं.
And number two,
और दूसरी बात,
he will judge the thoughts and the motives of men.
और मनुष्यों के हृदय के मनताएं अभिप्राय और उनके विचारों का वो न्याय करेगा जब प्रभु वापस आएगा.
So Paul says this.
तो पौलुस ये कहता है भाई.
Knowing the fear of the Lord.
परमेश्वर का भय जानो.
We preach to men.
प्रभु का भय जानते हुए हम लोग सामने प्रचार करते हैं.
I don't believe he's talking about our fear for those men because they will be punished if we don't preach to them.
और यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि हमें इस बात की चिंता करनी है कि जिन लोगों को हम प्रचार नहीं करेंगे तो उन लोगों पर न्याय होगा. उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस भय की बात नहीं कर रहा. ठीक है?
He's talking about a holy fear that he feels in his own heart because he must give an account for his ministry.
लेकिन यहाँ पे उस भय की बात कर रहा है कि अपने हृदय में उस भय को जानता है, परमेश्वर एक न्याय करेगा और उसकी सेवकाई का उसे हिसाब किताब देगा. उस भय की बात.
Notice Romans.
ध्यान दीजिए रोमियो के पत्री में.
And chapter 14.
और उसके 14 अध्याय में. 14 अध्याय में. रोमियो से 14 अध्याय. रोमियो से 14 अध्याय.
And verse 10.
और उसका 10 पद.
There was a problem in the church at Rome.
रोमियो के कलीसिया में एक समस्या थी.
Jewish and the Gentile Christians were having a little conflict.
और यहूदी और मसीही विश्वासियों के बीच कुछ मतभेद चल रहा था.
Why did Paul write the book of Romans?
और पौलुस ने रोमियों के पत्र क्यों लिखी?
He wanted to try to solve this division in Rome.
और पौलुस जो है रोम की कलीसिया में जो विभाजन चल रहा था उसको सुधारने का प्रयास कर रहा
था. Why?
Jew,
because he wanted to go to Spain.
क्योंकि वो स्पेन जाना चाहता था.
And he wanted the church at Rome to help him on his way to Spain.
और वो चाहता था कि रोमियो की कलीसिया उसकी मदद करे जब वो स्पेन जा रहा है.
And he knew if the church was divided with divisions, it would not be able or willing to help him.
उसको ये मालूम था कि अगर कलीसिया विभाजित रहेगी तो फिर वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे.
So he writes the book of Romans.
तो उसने रोमियो की कलीसिया को चिट्ठी लिखी.
And his main point is this.
और उसका मुख्य विषय ये है रोमियो की
कलीसिया. And Gentile are equal and united in the gospel.
वो कहता है कि यहूदी और यूनानी दोनों बराबर हैं और सुसमाचार में एक हैं.
Both Jew and Gentile are condemned by the law.
दोनों यहूदी और यूनानी व्यवस्था के द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं.
Both Jew and Gentile must be justified by faith.
और दोनों यूनानी और यहूदियों को विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जा सकता है.
Both Jew and Gentile are the descendants of Abraham.
और दोनों यहूदी और यूनानी दोनों ही इब्राहिम के वंशज हैं.
Both Jew and Gentile were all in Adam.
और दोनों यहूदी और यूनानी दोनों ही आदम में है.
Both Jew and and Gentiles are now in Christ.
और अब दोनों यहूदी और यूनानी दोनों ही मसीह में हैं.
Both Jew and Gentile are freed from sin.
और दोनों यहूदी और यूनानी पाप से स्वतंत्र कर दिए गए हैं.
Both Jew and Gentile are free from the law.
और अब दोनों यहूदी और यूनानी दोनों व्यवस्था से स्वतंत्र हैं.
Both Jew and Gentile are indwelt by the Holy Spirit.
और अब दोनों यहूदी और यूनानी के दोनों के भीतर पवित्र आत्मा वास करता है.
Both Jew and Gentile are included in the purposes of God.
और अब दोनों यहूदी और यूनानी दोनों से परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हो गए हैं.
Therefore,
इसलिए,
accept one another.
एक दूसरे को स्वीकार कर लो.
That's why Paul wrote Romans.
इसीलिए पौलुस ने रोमियों पत्रिका लिखो लिख दिया.
Verse 10.
दसवां पद.
Why do you judge your brother?
तुम क्यों अपने भाई को दोष लगाते हो?
Why do you regard your brother with contempt?
तुम क्यों अपने भाई को बुद्धों से जानते हो और उन्हें चढ़ाता?
For we must all stand before the judgment seat of God.
क्योंकि हम सब को कभी कभी न्याय की आसन सामने
खड़ा होना
है. Verse 12.
So each one of us will give an account of himself to God.
और इसलिए हम अपने प्रत्येक व्यक्ति को
भी देखना है. Verse 13.
Yeah.
Therefore.
अतः इसलिए.
Let us not judge one another. Anymore. Now listen carefully. What motivated Paul? He had a deep burden for the glory of God. He had a great desire to please God.
उसको प्रसन्न करने के लिए.
He had a right deep understanding of the fear of God.
और उसके अंदर एक सही बड़ा ही गहरा समझ थी परमेश्वर के भय के बारे में.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान सुन इस बात को.
The love of Christ in the gospel.
सुसमाचार में मसीह का प्रेम ने उसको प्रेरित किया. सुसमाचार में मसीह के प्रेम ने उसको प्रेरित किया. सुसमाचार में मसीह के प्रेम.
Look back in 2 Corinthians 5 again.
फिर से आइए दूसरा क्रोधी वाले.
It's full of proper motivations for the preacher.
यहाँ पे सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत सारे मंशाएं उद्देश्य अभिप्रायों से भरा हुआ है. दूसरा क्रोधी पाठ पर क्या है?
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
We have listed this in this order not because this is an order of priority.
हमने इस तरह से सूची इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि जो ऊपर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद के वाले कम महत्वपूर्ण है. इस तरह से इसलिए सूची नहीं बनाई है.
Certainly this was his highest goal.
यद्यपि पहला ना पहली बात इसके सबसे चरम सबसे उत्तम उसका लक्ष्य है सबसे बड़ा लक्ष्य है.
Certainly he wanted to please his father.
और ये बात भी सही है कि वो अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था.
Certainly understood he was given account for his ministry.
और उसको मालूम था कि इसको अपनी सेवकाई का हिसाब देना है परमेश्वर के सामने.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
What touched Paul's heart?
किस चीज ने पौलुस के हृदय को छू लिया? किस बात ने पौलुस के हृदय को छू लिया?
Down at the depth of his soul.
उसके प्राणों की गहराई में किस चीज ने किस बात ने को छू लिया?
Was the love and mercy of God in Christ Jesus.
वो था परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह यीशु मसीह में होकर के. परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह ने यीशु मसीह में होकर के पौलुस के हृदय की गहराई को और भीतरी प्राण को छू लिया. पांचवा अध्याय.
Second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों पांचवा अध्याय.
Verse 13.
उसका 13 पद.
If we are beside ourselves, it is for God.
अगर हम अपने बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए बेसुध.
What does he mean?
मतलब क्या उसका?
If we appear to be fools, it is only for God.
अगर लोग समझते हैं कि हम मूर्ख हैं तो सिर्फ परमेश्वर के वास्ते मूर्ख हैं.
We are considered of sound mind, it is for you.
अगर लोग समझते हैं कि हम चैतन्य हैं तो वो तुम्हारे लिए.
Notice verse 14.
14 पद ध्यान दीजिए.
For the love of Christ controls us.
Și că Masih hamen bebashi a nientren kana.
Now he's not talking about his love for Christ.
वो अपने प्रेम के बारे में बात कर रहा है जो उसका प्रेम मसीह के लिए उसकी बात कर रहा है.
What's he talking about?
वो किसी की बात कर रहा है मसीह के प्रेम के लिए मसीह का प्रेम उसके लिए उसकी बात कर रहा है.
Because our affection for Christ may go up and down.
क्योंकि मसीह के लिए हमारा प्रेम ऊपर नीचे हो सकता है ना.
But his affection for us is unchanging.
लेकिन मसीह का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता. वो हमेशा हमसे निरंतर एक समान प्रेम करता रहता है.
And what is the demonstration of that love?
और कैसे मसीह ने अपने उस प्रेम को हमारे प्रति प्रदर्शित कर दिया किस तरह से.
He said, "This is our conclusion."
वो कहता है निष्कर्ष का हमारा ये निष्कर्ष है.
This is the evidence.
वो कहता है ये है प्रमाण है.
Is the demonstration of his love.
वो कहता है मसीह के प्रेम का प्रदर्शन इसमें हो गया.
One died for all.
कि एक जन सबके लिए मर गया.
Therefore all died.
इसलिए सबके सब मर गए.
Why did he die for all?
क्यों मर गया सबके लिए?
Verse 15.
पंद्रह पद देखिए.
So that those who live might no longer live for themselves.
ताकि वे सब लोग जो जीवित हैं अब अपने लिए ना जिए.
Live for him who died and rose again on their behalf.
लेकिन उनके उसके लिए जो उनके बदले मरा और जी गया.
Now there was a deep, deep emotion in Paul's heart that moved him.
और पौलुस के हृदय में एक बड़ा ही गहरी भावना थी और ऐसे विचार थे जो उसको उसको चला रहे थे यहाँ पे.
That was an understanding of the love of God in Jesus Christ.
और वो भावना वो थी जो परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में होकर के जब उसने समझ लिया था उसको समझ रहा था.
Paul said, "Why do I suffer?"
और पौलुस कहता मैं क्यों क्यों दुख उठाता हूँ?
Because he suffered for me.
क्योंकि उसने मेरे लिए दुख
उठाया. Why do I preach Christ?
वो कहता मैं क्यों मसीह का प्रचार करता
हूँ? The only way to be saved.
क्योंकि यही तरीका है.
Why do I serve the church?
क्यों मैं कलीसिया की सेवा करता
हूँ? Jesus loved the church.
क्योंकि मसीह ने कलीसिया से प्रेम
किया. Why do I preach to sinners?
क्यों मैं
Because I received mercy.
क्योंकि मैंने दया को पाया है.
My friend, hear me.
अब मेरे मित्रों मुझे सुन लीजिए आप ध्यान से.
When your heart is cold.
जब आपका हृदय ठंडा होता है.
And your faith is weak.
और आपका विश्वास कमजोर होता है.
And you are discouraged.
और आप निरुत्साहित होते हैं.
Let me tell you where to go.
मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ जाना चाहिए आपको.
Go back to Calvary. Go to the foot of the cross.
और क्रूस के नीचे की तरफ जाइए.
And look at that dying form.
और वो उसको जो मर रहा है उसकी ओर देखिए.
And see that pure, clean, spotless blood.
और उस शुद्ध, पवित्र, बेदाग खून की ओर अपनी आंखों को उठाइए.
And you will go on.
और फिर तभी आप सारी चलने पाएंगे, रहने पाएंगे, चलने पाएंगे जीवन में.
Why did Christ institute the Lord's Supper?
क्यों यीशु मसीह ने प्रभु भोज का आरंभ किया?
So we could remember what?
ताकि क्या याद?
His example?
उसके उदाहरण को?
His teaching?
उसके शिक्षाओं को?
His death?
उसके मृत्यु को?
He gave one institution that was appointed to remind us again and again and again of the love of God in Jesus Christ.
उसने हमें एक रीति रिवाज दे दिया ताकि हमें बार बार बारंबार बार बार हमें परमेश्वर के प्रेम को याद दिलाए जो यीशु मसीह में होकर के हम पे प्रकट कर दिया गया है.
Apparently, there's one thing he does not want us to forget.
और ऐसा प्रतीत होता है स्पष्ट है कि ये एक बात है जो यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम भूल जाएं.
That's his death.
और वो ये है कि हम उसकी मृत्यु को कभी ना भूलें.
You must live at the foot of the cross.
इसलिए आपको क्रूस के पांव के तले जीना चाहिए.
And then you must live at the front of the empty tomb.
और फिर आपको जो खाली कब्र है उसके सामने जीवन जीतना चाहिए.
And then you must live in the presence of that one that died and is now living again.
और आपको उसके सामने उपस्थित होना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए जो एक बार मर गया लेकिन अब वो जीवित है, पुनः जीवित है.
You must live in the shadow of the cross.
आपको क्रूस की परछाई के तले जीना चाहिए.
Because God demonstrated his love.
क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके प्रति क्रूस में होकर के प्रदर्शित कर दिया.
And that while we were yet sinners, Christ died for us.
कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मसीह मरा.
I want to give you some more homework.
मैं आपको कुछ और निकाल देना चाहता हूं.
Every day.
प्रतिदिन.
For the rest of your life.
अपने जीवन के बाकी दिनों तक की.
Get on your knees.
अपने घुटनों पे जाइए.
And thank God for Jesus Christ.
और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए.
There is your righteousness.
वो है आपकी धार्मिकता.
There is your redemption.
और वहां पर है आपका छुटकारा.
There is your salvation.
और वहां पे है आपकी मुक्ति.
There is your justification.
और वहां पे है आपका धार्मिक ठहराया जाना.
It is with a man in heaven.
ये है उस व्यक्ति के साथ जो स्वर्ग में है.
Who walked this earth.
जिसने इस पृथ्वी पे कदम करे.
Who lived a life.
वो जीवन व्यतीत किया उसने.
Lived a life you could not live.
उसने एक ऐसा जीवन व्यतीत किया जिसको आप हम जी नहीं सकते थे.
Who died a death you could not die.
और उसने एक ऐसी मृत्यु सहली जिसको आप और हम नहीं मर सकते थे.
Paid a penalty you could not pay.
उसने एक ऐसी कीमत चुका दी जिसको हम और आप नहीं चुका सकते थे.
He was raised from the dead.
और फिर वो मृतकों में से जी उठा.
Declared with power to be the Son of God.
और फिर उसने सामर्थ के साथ घोषणा कर दी कि परमेश्वर का पुत्र है.
And that is your salvation.
और यही है आपकी मुक्ति उद्धार मोक्ष.
Love him.
उसे प्रेम करिए.
Serve him.
उसकी सेवा करिए.
Preach him.
उसका प्रचार करिए.
Honor him.
उसका आदर करिए.
Live for him.
उसी के लिए जिए.
Give your life for him.
अपना जीवन उसके लिए दे दीजिए.
Because he gave his life for you.
क्योंकि उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया.
Paul said this.
पौलुस ने यह कहा.
The love of Christ.
मसीह का प्रेम
constrains me.
मुझे विवश करता है.
The word means presses me in and holds me.
इस शब्द का मतलब है कि ये मुझे दबाता है और मुझे पकड़ के रखे है.
That's what motivated Paul.
और यही चीज है जो पौलुस को प्रेरित कर रही थी.
What motivates you?
क्या चीज है जो आपको प्रेरित करती है?
Glory of God.
परमेश्वर की महिमा.
Please God.
परमेश्वर का प्रसन्न करना.
Fear of God.
परमेश्वर का भय.
The love of Jesus Christ.
या मसीह का प्रेम.
He glorified the Father.
मसीह ने परमेश्वर पिता को महिमान्वित किया.
He always did those things pleasing to the Father.
और मसीह ने हमेशा वो चीजें की जो उसको प्रसन्न करती थी.
He took the wrath we deserved upon himself.
उसने हमारे लिए वो क्रोध प्रकोप सह लिया जो हमारे लायक था.
So that we might know love and forgiveness.
ताकि हम प्रेम और क्षमा को जान सकें.
That's what moved Paul.
और यही चीज था जो पौलुस को भी प्रेरित करा.
Does that move you?
क्या आप इस बात को सुनकर के आप बाधित होते हैं? क्या आप आगे बढ़ते हैं?
Problem with many preachers.
बहुत से प्रचारक साथ समझ रहे हैं.
They become so used to saying this.
कई प्रचारक जो ये सारी बातें कह रहे हैं इतने आदी हो जाते हैं.
It doesn't move them anymore.
कि आप उनके उनके हृदय तो व्याकुल ही नहीं होते बिल्कुल इस बात को सुनकर.
There are several things the apostle Paul never got over.
और कई चीजें हैं जिन चीजों को सुनकर के पौलुस का कभी मन भर नहीं गया कभी.
Sometimes he's writing.
और कभी कभी वो लिख रहा होता
है. Or he's quoting and dictating for someone to write for him.
क्या होता है वो किसी से कह रहा है तो मेरे बदले में लिखो.
And something that he says just prompts his mind again to consider these things.
और कभी कभी कुछ बातें हो जाती थी एकदम जो उसके दिमाग में ये सारी बातें विचार फिर से आते उसके दिमाग में.
God chose me.
अरे प्रभु ने मुझे चुन लिया.
Christ died.
अरे मसीह मेरे लिए मर गया.
God appointed.
और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त कर दिया.
And he never got over that.
और इस बात को लेकर के कभी उसका मन भर नहीं गया.
You don't need to ever get over it either.
आपको भी इस बात को भूलने की जरूरत नहीं कि हाँ अच्छा ठीक है हो गया मन भरने की जरूरत नहीं आपको इन बातों को सुनकर के.
And when your heart is cold.
और लेकिन जब आपका हृदय ठंडा हो जाता है.
Go to the foot of the cross.
तब आप क्रूस के तले जाइए.
When you have sinned.
जब आपने पाप किया है.
Go to the cross.
क्रूस के पास जाइए.
When you have weakness.
जब आपकी कमजोरी है क्रूस के पास जाइए.
गो टू क्राइस्ट.
मसीह के पास जाइए.
He loves you.
वो आपसे प्रेम करता है.
He gave himself for
you. उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया.
Let us love him.
आइए हम लोग उससे प्रेम करें.
Let us give ourselves.
आइए हम अपने आप को दे दें उसके लिए.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.